जो लोग अतीत को याद नहीं करते वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। फिर कभी नहीं का वादा, जो हॉलोकॉस्ट की राख से जन्मा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और वैश्विक नैतिक चेतना का आधार रहा है। फिर भी, जैसा कि जॉर्ज सेंट डायना ने इस निबंध के शीर्षक में चेतावनी दी, अतीत के अत्याचारों और वर्तमान संकटों के बीच समानताएं उन विचारधाराओं और प्रणालीगत विफलताओं में एक परेशान करने वाली निरंतरता को प्रकट करती हैं जो नरसंहार को बढ़ावा देती हैं। यह निबंध तीन अध्यायों के माध्यम से इन समानताओं की पड़ताल करता है। पहला, हॉलोकॉस्ट में श्रेष्ठता और अमानवीकरण की भूमिका और राष्ट्रसंघ और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय पीसीआईजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की इसे रोकने या बंद करने में विफलता। दूसरा, अरबों, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के प्रति इसराइल के दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयों में आश्चर्यजनक समानताएं। और तीसरा, गाजा में नरसंहार को स्थापित करने वाले आपराधिक इरादे, मेंसरिया और आपराधिक कृत्य, एक्टस रॉयस के ठोस सबूत, जो फिर कभी नहीं के वादे, नरसंहार कन्वेंशन और संरक्षण की जिम्मेदारी, आटोपी सिद्धांत के तहत राज्यों और अधिकारियों के नैतिक और कानूनी दायित्व को रेखांकित करते हैं। श्रेष्ठता, अमानवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की विफलता। हॉलोकॉस्ट इतिहास के सबसे व्यवस्थित नरसंहारों में से एक, नस्लीय श्रेष्ठता और अमानवीकरण की विचारधारा पर आधारित था, जिसने 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों के विनाश को उचित ठहराया। नाजी विचारधारा, आर्यन श्रेष्ठता की अवधारणा में निहित, यहूदियों को जर्मन राष्ट्र के लिए एक उपमानव खतरे के रूप में चित्रित करती थी। प्रचार ने यहूदियों को कीट, परजीवी और नस्लीय शत्रु के रूप में दर्शाया, उनकी मानवता को छीन लिया और उनकी व्यवस्थित विनाश को आसान बनाया। यह अमानवीकरण एक सहज क्रिया नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर रणनीति थी, जैसा कि हिटलर के भाषणों और गोबल्स के प्रचार में देखा गया, जिसमें यहूदियों को जर्मनी के अस्तित्व के लिए हटाने योग्य एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया। नाजी शासन ने यहूदियों को वॉर्सॉ जैसे यहूदी बस्तियों में केंद्रित किया, जहां भुखमरी और बीमारी ने हजारों लोगों को मार डाला। फिर उन्हें ऑशविट्स जैसे नरसंहार शिविरों में निर्वासित किया गया, जहां गैस चैम्बरों के माध्यम से औद्योगिक हत्या की गई। यहूदियों को एक समूह के रूप में नष्ट करने का इरादा अंतिम समाधान में स्पष्ट था, जो नरसंहार के लिए आपराधिक इरादे को पूरा करता था, जबकि कृत्य हत्या, गंभीर नुकसान पहुंचाना, घातक परिस्थितियां थोपना, नसबंदी के माध्यम से जन्म रोकना और 1.5 मिलियन बच्चों की हत्या ने बाद में परिभाषित संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन 1948 के तहत आपराधिक कृत्य को पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विशेष रूप से राष्ट्रसंघ और प्सिज, संरचनात्मक कमजोरियों और भूराजनीतिक वास्तविकताओं के कारण इस नरसंहार को रोकने या बंद करने में विफल रही। 1920 में शांति बनाए रखने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ में प्रवर्तन तंत्र की कमी थी और यह सर्वसम्मत निर्णयों पर निर्भर था, जिसने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़ी शक्तियों को नाजी जर्मनी के तुष्टिकरण को हस्तक्षेप से ऊपर प्राथमिकता देने की अनुमति दी। राष्ट्रसंघ द्वारा समर्थित एवियन सम्मेलन 1938 यहूदी शरणार्थी संकट को संबोधित करने में विफल रहा, क्योंकि अधिकांश देशों ने शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे नाजी अत्याचारों को बढ़ावा मिला। सिच, राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग, राज्यों के बीच विवादों को निपटाने में सक्षम था, लेकिन इसके पास हॉलोकॉस्ट जैसे आंतरिक अत्याचारों को संबोधित करने का कोई जनादेश या शक्ति नहीं थी, जो उस युग में संप्रभुता को मानवाधिकारों से ऊपर प्राथमिकता देने को दर्शाता है। जब हॉलोकॉस्ट की पूरी तस्वीर सामने आई, तब तक राष्ट्रसंघ निष्क्रिय हो चुका था और विश्व युद्ध में था, जो कमजोर आबादी की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों की भयावह विफलता को रेखांकित करता है। इसराइल के अरबों के प्रति दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयों में समानताएं। इसराइल का अरबों, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के प्रति दृष्टिकोण और गाजा में उसकी कार्रवाइयां हॉलोकॉस्ट के साथ भयावह समानताएं प्रकट करती हैं, जो श्रेष्ठता, अमानवीकरण और व्यवस्थित हिंसा की विचारधाराओं में निहित हैं। इसराइली नेताओं के ऐतिहासिक बयान फिलिस्तीनियों को बाहर करने या नष्ट करने की दीर्घकालिक मंशा को दर्शाते हैं। योसेर वीट्स 1940 के दशक ने अरबों के बिना इसराइल की भूमि की मांग की, सभी फिलिस्तीनियों के हस्तांतरण की वकालत की, एक भी गांव, एक भी कबीला नहीं छोड़ने की बात कही। मेनकेम बेगिन 1982 ने यहूदियों को मास्टर रेस के रूप में दावा किया, अन्य नस्लों को पशु और जानवर, सबसे अच्छे हाल में पशु के रूप में लेबल किया, जो नाजी आर्यन श्रेष्ठता को प्रतिध्वनित करता है। रफाइल एटान 1983 ने फिलिस्तीनियों को नशीली दवा से भरे कॉकरोच एक बोतल में के रूप में कल्पना की, जब भूमि पर उपनिवेश स्थापित हो जाए तो नाजी प्रचार के समान उन्हें अमानवीय बनाया। हाल ही में जेरूसलम फ्लैग मार्च 2023 में हजारों लोगों ने अरबों को मारो और तुम्हारा गांव चल जाए के नारे लगाए, जबकि 2024 की एक बसने वाली सम्मेलन ने गाजा में बसने की योजना बनाई, जिसमें हमास के बिना और निहित रूप से फिलिस्तीनियों के बिना भविष्य की कल्पना की गई। इसके अतिरिक्त विरासत मंत्री अमीचाई इलियाहू ने नवंबर 2023 में कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल का एक विकल्प गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना हो सकता है, एक टिप्पणी जो हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अस्वीकृत विनाश की एक चरम बयानबाजी को दर्शाती है, जो गाजा के पूर्ण विनाश के लिए कई आह्वानों में प्रतिध्वनित हुई है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या अन्य जगहों पर। ये दृष्टिकोण गाजा में उन कार्रवाइयों में तब्दील हो जाते हैं जो नाजी रणनीतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। गाजा, जहां 21 लाख लोग 2007 से नाकाबंदी के तहत 365 वर्ग किलोमीटर में सीमित हैं, एक नाजी यहूदी बस्ती जैसा है जो अब एक बड़े नरसंहार शिविर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अक्टूबर 2023 से इसराइल की मुहिम ने 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 15,000 बच्चे शामिल हैं, बमबारी के माध्यम से गाजा स्वास्थ्य प्राधिकरणों के अनुसार 2024 के अंत में 2 महीने की पूर्ण घेराबंदी मई 2025 तक, जिसे इसराइल काट्स, गाजा में कोई मानवीय सहायता नहीं आने वाली है और बेजालेल स्मोटरिच, एक भी गेहूं का दाना नहीं, ने पुष्टि की, ने अकाल का कारण बना, जिसमें 11 लाख लोग भुखमरी के जोखिम में हैं और बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार 2024। बुनियादी ढांचे का विनाश -70% आवास, अधिकांश अस्पताल अजीवनीय परिस्थितियां पैदा करता है, जबकि सफ़ेद फॉस्फोरस का उपयोग जन्मजात विकृतियों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 2023। वेस्ट बैंक में, जिसे इसके चेकपॉइंट और बस्तियों के साथ यहूदी बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है, 2023 में 83 बच्चे मारे गए, जो पिछले वर्ष की कुल संख्या का दोगुना है, बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों के बीच, यूनिसेफ के अनुसार। 2024 में द टाइम्स ऑफ इसराइल का एक लेख, जो वेस्ट बैंक में जीवन क्षेत्र की मांग करता है ताकि इसराइल की बढ़ती आबादी 2040 तक 152 लाख को समायोजित किया जा सके, सीधे नाजी प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, जिन्होंने जर्मन बसने वालों के लिए जगह खाली करने के लिए नरसंहार को उचित ठहराया। इसराइली अधिकारियों के बयान, जैसे योआव गैलेंट के मानव पशु 2023 और एक संसदीय दस्तावेज जो आईडीएफ से सफेद झंडा न लहराने वाले सभी को मारने की मांग करता है 2025, फिलिस्तीनियों को अमानवीय बनाते हैं और अंधाधुंध निशाना बनाते हैं, जैसा कि नाजी नीतियों ने यहूदियों को निशाना बनाया। स्मोटरिच का नवंबर 2023 में अतिरिक्त टिप्पणी की इसराइल युद्ध के बाद गाजा को नियंत्रित करेगा, एक दीर्घकालिक योजना को सुझाता है जो फिलिस्तीनी उपस्थिति को समाप्त करने के लिए है, जो बसने वाले सम्मेलन की दृष्टि और अरबों के बिना भूमि के ऐतिहासिक आह्वानों के साथ संरेखित है। यह व्यवस्थित हिंसा गाजा और वेस्ट बैंक में पहले से मौजूद कारावास द्वारा संभव हुई, होलोकॉस्ट की यहूदी बस्तियों और शिविरों के उपयोग को अलग करने और नष्ट करने के लिए प्रतिबिंबित करती है। गाजा में नरसंहार के सबूत और वैश्विक कार्रवाई का दायित्व। गाजा में सबूत संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन और रोम संनियम के तहत नरसंहार के लिए आपराधिक इरादे और आपराधिक कृत्य दोनों को स्थापित करते हैं, जो राज्यों और अधिकारियों को फिर कभी नहीं के वादे नरसंहार कन्वेंशन और आटोपी सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं। आपराधिक इरादा, गाजा में फिलिस्तीनियों को नष्ट करने का इरादा अमानवीय बयानबाजी और स्पष्ट नीतियों के पैटर्न में स्पष्ट है। ऐतिहासिक बयान, बीट्स, बेगिन, एटान ने बहिष्कार का प्रीडेंट सेट किया, जबकि समकालीन बयान इस इरादे को कार्रवाई में पुष्टि करते हैं, गैलन का मानव पशु, स्मोटरिच का एडिटर का एक भी गेहूं का दाना नहीं, काट्स का गाजा में कोई मानवीय सहायता नहीं आने वाली है, और फ्लैग मार्च का अरबों को मारो सभी फिलिस्तीनियों को एक समूह के रूप में नष्ट करने के लिए फ्रेम करते हैं। बसने वाली सम्मेलन का गाजा हमास के बिना और निहित रूप से फिलिस्तीनियों के बिना योजना कई आह्वानों के साथ संरेखित है, जो गाजा के पूर्ण विनाश की मांग करते हैं, जैसे कि 2023 में इलियाहू का सुझाव गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने का, स्मोटरिच का दावा कि इसराइल युद्ध के बाद गाजा को नियंत्रित करेगा, फिलिस्तीनी उपस्थिति को पूरी तरह समाप्त करने की दृष्टि को और संकेत देता है। इसराइल का 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के उपायों का पालन न करना, जो नरसंहार को रोकने के लिए सहायता पहुंच का आदेश देते थे, इन कृत्यों को इरादे से और जोड़ता है, क्योंकि यह घातक परिस्थितियों को बढ़ाने का एक जानबूझकर विकल्प दिखाता है। आपराधिक कृत्य, इसराइल की कार्रवाइयां कई नरसंहार कृत्यों को पूरा करती हैं, वन हत्या, गाजा में 40,000 मौतें, वेस्ट बैंक में 83 बच्चे 2023, जो गंभीर नुकसान, बमबारी, चोटें, आघात और रसायनों, सफ़ेद फॉस्फोरस का संपर्क, 3 जीवन की परिस्थितियां, घेराबंदी, अकाल और बुनियादी ढांचे का विनाश जो अजीवनीय परिस्थितियां पैदा करता है, 4 जन्म रोकना, कुपोषण और रसायनों से गर्भपात और प्रजनन क्षति, 5 बच्चों का हस्तांतरण, गाजा में 15,000 बच्चों, वेस्ट बैंक में 83 बच्चों की हत्या, कब्रों में हस्तांतरण, फ्लैग मार्च के हमले और वेस्ट बैंक में हिंसा इस पैटर्न को जोड़ते हैं, जो सभी क्षेत्रों में एक व्यवस्थित अभियान दिखाते हैं। ये सबूत नरसंहार के लिए कानूनी सीमा को पूरा करते हैं, क्योंकि आईसीजी 2024 ने एक विश्वसनीय जोखिम पाया और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी शामिल है। हॉलोकॉस्ट के साथ समानताएं श्रेष्ठतावादी विचारधारा, अमानवीकरण, एकाग्रता और व्यवस्थित हत्या संकट की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। एलियाहू का परमाणु बम टिप्पणी भले ही अस्वीकृत हो, एक चरम बयानबाजी को दर्शाता है जो स्मोटरिच की युद्ध के बाद नियंत्रण की दृष्टि के साथ पूर्ण विनाश पर विचार करने की इच्छा को सुझाता है, जो नरसंहार के इरादे को और साबित करता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फिर से विफल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वीटो द्वारा पंगु है, आईसीजी के निर्णय लागू नहीं किए जा सकते और आईसीसी के वारंट में निष्पादन की कमी है, जो हॉलोकॉस्ट के दौरान राष्ट्रसंघ की विफलताओं को प्रतिबिंबित करता है। हॉलोकॉस्ट के सबक से जन्मे फिर कभी नहीं के वादे, नरसंहार कन्वेंशन अनुच्छेद राज्यों को नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए बाध्य करता है और अटूपी सिद्धांत राज्यों को नरसंहार से आबादी की रक्षा करनी चाहिए विफल होने पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के साथ के तहत प्रत्येक राज्य और अधिकारी का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह कार्रवाई करे। इसमें प्रतिबंध लगाना, इसराइल को सैन्य सहायता रोकना, उदाहरण के लिए 2023 से अमेरिका के $17 बिलियन आईसीसी वारंट लागू करना और घेराबंदी और बमबारी को समाप्त करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप का समर्थन करना शामिल है। कार्रवाई न करना राष्ट्रसंघ की गलतियों को दोहराता है, जो मानवता को नरसंहार से बचाने के वादे को धोखा देता है। निष्कर्ष: हॉलोकॉस्ट और गाजा उन विचारधाराओं में एक दुखद निरंतरता को प्रकट करते हैं जो नरसंहार को बढ़ावा देती है, श्रेष्ठता और अमानवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रणालीगत विफलताएं जो इसे संभव बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र, आईसीजे और आईसीसी महाशक्तियों की राजनीति और संप्रभुता मानदंडों द्वारा पंगु गाजा में इसराइल की कार्रवाइयों को रोकने में विफल रहते हैं, जो श्रेष्ठतावादी बयानबाजी और फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की मंशा के इतिहास द्वारा समर्थित हैं। आपराधिक इरादे और आपराधिक कृत्य के सबूत, एलियाहू के परमाणु विनाश के सुझाव और स्मोटरिच की युद्ध के बाद नियंत्रण की दृष्टि जैसे चरम बयानों द्वारा और मजबूत किए गए नरसंहार को निस्संदेह स्थापित करते हैं। फिर कभी नहीं नरसंहार कन्वेंशन और आटोपी के तहत वैश्विक समुदाय का दायित्व गाजा में अत्याचारों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है, ताकि इतिहास अपने सबसे अंधेरे अध्यायों को न दोहराए। फिर कभी नहीं का वादा महज शब्दों से अधिक होना चाहिए, न्याय, संरक्षण और मानवता के लिए कार्रवाई का आह्वान होना चाहिए।